काली शक्तियों के मालिक अमित का भेजा गया बिच्छू तारापरी को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वक्त रहते वे तीनों माँ, बेटा और बेटी यानी अमन, मान और करिश्मा जी वहाँ पहुँच जाते हैं। और उनके पहुँचते ही वो बिच्छू एक बहुत छोटे से बिच्छू के रूप में बदलकर भाग जाता है, लेकिन वो तारापरी को बेहोश कर जाता है। अमन और मान तारापरी को उठाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। तभी करिश्मा जी की नज़र तारापरी के हाथों पर जाती है। तारापरी के हाथों में मोहन का दिया हुआ वो कागज था जिसमें किसी जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। करिश्मा जी तारापरी के हाथ से वो कागज ले लेती हैं और एड्रेस देखकर चौंक जाती हैं। उन्हें याद आता है कि उन्होंने ही आज तारा को एक घंटे का समय दिया था कि या तो वो अपना कोई एड्रेस दे जहां वो पली बढ़ी है, जहां वो रहती है। एड्रेस देखकर करिश्मा जी को एहसास हो गया था कि ये तारा के घर का या किसी जान पहचान वाले का एड्रेस है जो ये जानता हो कि तारा बचपन से लेकर आज तक कहाँ रहती थी, क्या करती थी। एक और करिश्मा जी उस एड्रेस को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगी थी और वहीं मान और अमन तारापरी को होश में लाने की जद्दोजहद कर रहे थे। तभी अमन ने करिश्मा जी को एक एड्रेस हाथ में थामे देखा और वो अपनी माँ को तेज आवाज में बोला, मॉम। करिश्मा जी अपने बेटे की बात सुनकर मानो ख्वाब से बाहर आई थी और बोली थी, हाँ बेटा बोलो। मॉम हम क्या करें, तारा को तो होश ही नहीं आ रहा है। तब करिश्मा जी बोली, अमन बेटा एक काम करो, तिलस्मी पत्थर ले आओ और उसे तारा बेटी के माथे से छुआ दो। तब अमन ने और मान ने एक साथ कुछ मंत्रों का जाप किया और देखते ही देखते एक चमकदार पत्थर उसके हाथ में था। अमन ने ज्यादा समय ना लेते हुए वो पत्थर तारापरी के माथे पर से छुआ दिया था, लेकिन तारापरी को उस तिलस्मी पत्थर से भी होश नहीं आया था। अमन ये देखकर परेशान हो गया था कि तारा को तिलस्मी पत्थर से भी होश क्यों नहीं आ रहा है। तब करिश्मा जी बोली, बेटा तूने देखा नहीं, एक काली दुनिया से आया हुआ बिच्छू था, उसने तारा बेटी को काटा नहीं है, लेकिन उसने इसे अपने जहर से बेहोश कर दिया है। इसे अब बगीचे का सरोवर ही ठीक कर सकता है। हमें जल्द से जल्द तारा बेटी को बगीचे में लेकर जाना होगा। बेटा जब से तुम्हारे दादा जिन महाराज ने बरगद के पेड़ पर समाधि ली है, तब से उनकी एक चौथाई शक्तियां उस बगीचे की हर चीज में आ गई हैं, और अब जादुई सरोवर ही ज्योति बेटी को ठीक कर सकता है। तुम जल्दी करो और उसे वहां लेकर चलने की तैयारी करो। अमन और मान एक नज़र अपनी माँ की ओर देखते हैं और जल्दी ही तारा को लेकर बगीचे की ओर चल पड़ते हैं। वहीं करिश्मा जी वहीं रुक जाती हैं और उनके हाथ में जो कागज़ था और उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था उसके बारे में सोचने लगती हैं, और वे कुछ समय के लिए अपने बंगले में बने हुए एक वाइट कलर के छोटे से कमरे में जाती हैं और वहां बैठकर कुछ देर अंतर्मुख होकर उस एड्रेस के बारे में जानने की कोशिश करती हैं। और जल्दी ही करिश्मा जी को कामयाबी मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये पता जिस जगह का है वो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में बने एक छोटे से गांव का है। करिश्मा जी वो एड्रेस अपने दिमाग में बसा लेती हैं और वहां जाने की तैयारी करने लगती हैं। उन्होंने सोच लिया था तारा के आते ही वे अपने दोनों बेटों के साथ उस पते पर जरूर जाएंगी और उसके बाद उन तीनों की शादी कराएंगी। ये सोचकर करिश्मा जी तैयार हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अमन और मान तारा को लेकर सीधा उस बगीचे में जाते हैं और बरगद के पेड़ को झुककर प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि जिन महाराज हमारी होने वाली बीवी की हालत बेहद गंभीर है, आप हमारी मदद करें। ऐसा कहकर वे तारा को सरोवर में ले जाते हैं। तारापरी को एक तरफ से अमन ने पकड़ रखा था और दूसरी तरफ से मान ने, और उन दोनों ने जैसे ही तारापरी को मायावी सरोवर में डुबोना शुरू किया तभी धीरे धीरे तारापरी के अंदर से उस बिच्छू का जहर निकलने लगा था और वो तीन बार की डुबकी से ही होश में आने लगी थी। और जैसे ही अमन और मान तारापरी को चौथी बार पानी में डुबकी लगाने के लिए डुबोने लगे तभी तारापरी ने उन दोनों को रोक दिया। अब तक तारा को पूरी तरह से होश आ गया था और वो निढाल सी मान के ऊपर जा गिरी थी। मान की नज़र बार बार तारापरी के ऊपर जा रही थी क्योंकि भीगने की वजह से तारा का पूरा जिस्म चांदी जैसे चमक रहा था। मान की नीयत खराब हो रही थी, जबकि अमन को उस वक्त केवल यही फिक्र थी कि वो तारा को जल्द से जल्द बाहर निकाले और चेक करे कि वो ठीक है या नहीं। तभी मान ने अमन से कहा था, भाई आप एक काम करें, जब तक मैं तारा को सरोवर से बाहर लेकर आऊं तब तक आप बाहर जाएं और मॉम को फोन करके बता दें कि तारा आप ठीक है। अमन तो अपने सीधे स्वभाव में था, अमन को तो पता भी नहीं था कि मान के मन में क्या चल रहा है। अमन के सरोवर से बाहर निकलते ही मान ने तारापरी को ऊपर से लेके नीचे तक देखा था। तारा ने अभी भी वही ग्रीन कलर का लहंगा और चोली पहने हुए था। पानी में डूबने की वजह से उसके जिस्म का हर हिस्सा तारापरी की खूबसूरती की गवाही दे रहा था। अचानक मान ने तारापरी के जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था और वो उसकी नग्न कमर पर हाथ फेर रहा था। तारापरी होश में तो थी लेकिन वो बेहद थकी हुई थी, सुबह हवासी हालत में थी, इसलिए मान का उसके जिस्म पर हाथ फेरना वो महसूस नहीं कर पाई थी। और तभी मान ने तारापरी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था और अपनी आवाज में फिक्र लाकर बोला था, तारा आप ठीक तो है ना, आपको पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था आपकी ऐसी हालत देखकर। तब तारापरी बोली, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर तारापरी ने उसके हाथ हटा दिए और बोली, चलो हम चलते हैं, अमन सर हमारा वेट कर रहे होंगे। तब तारापरी पलटकर धीरे धीरे उस सरोवर से बाहर जाने लगी थी और उसके पलटने से उसकी खूबसूरत कमर और उस पर ग्रीन रंग की ब्लाउज की 4 इंच की पट्टी देखकर मान अब अपने होश खो बैठा था और वो खुद पर काबू नहीं रख पाया था और वो तुरंत तारापरी के जिस्म की ओर लपका था और जैसे ही उसने तारापरी को उसकी कमर से पकड़ लिया था और बोला, तुम अभी कमजोर हो, रुको मैं तुम्हारे इस सरोवर से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने तारापरी की कमर को कसकर पकड़ लिया और अब वो तारा के इतने करीब आकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अचानक उसने अपने होंठों को तारा की कमर पर रख दिया और वो उसे बेतहाशा चूमने लगा था। उस ठंडे पानी में तारापरी को मान की सांस गर्म गर्म लग रही थी और वो मान के इस कदम से एकदम से सुन हो गई थी। मान उसकी पूरी कमर को चूमता हुआ अपने हाथों को उसकी छाती पर ले आया था और फिर धीरे धीरे उन्हें प्रेस करने लगा था। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले जन्म में वो राजा राधा को पानी से भरे तालाब में चूम रहा था। जैसे ही तारापरी को यह सब याद आया, उसने मान को एक जोरदार धक्का दे मारा था जिससे मान पानी में जा गिरा था। और इससे पहले कि मान तारापरी से या तारापरी मान से कुछ कह दे, तभी अमन वहां आ गया और बोला, अरे अभी तक तुम दोनों यहीं हो, आओ जल्दी हमें निकलना है।
तारापरी मान को कड़ी कड़ी नजरों से देखने लगी थी और तभी अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तारापरी को सरोवर से बाहर निकालने लगा था। तारापरी ने हल्की सी झिझक के साथ अपना हाथ अमन को दे दिया और बाहर निकलने लगी। तारापरी जल्दी ही अमन के पास खड़ी हुई थी और वो वहां खड़े होकर मान को गहरी नजरों से देख रही थी। अचानक से तारापरी को मान में उस राजा की परछाई नजर आ रही थी जो पिछले जन्म में राधा के साथ था। तभी अमन ने तारा को इस तरह से सोच में गुम देखा और बोला था, क्या हुआ मिस तारा, आप ठीक तो है ना? तब तारा फीकी सी हंसी हंस पड़ी और बोली थी, जी जी अमन सर, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। अमन ने कहा, ओके, तुम एक काम करो, कुछ देर के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर लो और उसके बाद हम घर चलेंगे। तारापरी ने हाँ में सर हिला दिया और बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और अमन मान से बोला, अरे मान, तो क्या इस पानी में ही रहने वाला है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, आ जल्दी, चलो मॉम से मेरी फ़ोन पर बात हो गई है, हमें निकलना है। वहीं तारापरी बरगद के पेड़ के पास उदास उदास सी बैठ गई थी और खाली खाली नज़रों से पेड़ को देखने लगी थी। तभी उसे याद आया कि उस पेड़ के तने के पास तो वो नन जिन भी है जो माली काका की बीवी थी। तारापरी को अचानक से उनका ख्याल आ गया था कि एक इंसान की मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कितने ही साल बर्बाद कर दिए थे। आखिर ये कैसी मोहब्बत थी, उन्होंने अपना सब कुछ अपनी मोहब्बत के लिए छोड़ दिया और यहाँ आकर पछतावे के आंसू बहाती हैं, कितना दर्द कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। और आज अचानक मान के छूने से उसे कुछ बहुत अलग फील हुआ था और मान का बर्ताव उसे उस परीलोक के दानव की याद दिला गया था, क्योंकि जब जब वो परीलोक का दानव उसे छूता था तब तब उसे ऐसी ही गंदी सी फीलिंग आती थी। लेकिन अब जब मान ने उसे छुआ तो उसे इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक रहमदिल और नेकदिल इंसान था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। उसके जिस्म को लेकर उसकी हवस उसे बहुत ही ज्यादा बेचैन कर रही थी। तारापरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। तभी तारापरी की आंखों से कुछ आंसू निकलकर उस बरगद के पेड़ पर बने तने पर गिर गए जहां माली काका की बीवी दफन थी।